हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूत हितेरताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावित है, भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। तो चर्चा शुरू करते हैं। यतात्मना का अर्थ क्या होता है? यतात्मना का अर्थ है जिसका संयम हो, आत्मसंयमी व्यक्ति और आत्मा के साक्षात्कार में प्रवृत्त व्यक्ति, ये एतात्मना व्यक्ति होता है। और ऐसे लोग, यहाँ भगवान बता रहे हैं, सभी जीवात्माओं के हित के लिए कार्य करते रहते हैं। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि पंडित व्यक्ति है, वो सभी जीवात्माओं को एक समान दृष्टि से देखता है। लेकिन यहाँ भगवान इस बात को और आगे ले जा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति न सिर्फ केवल सबको एक ही दृष्टि से देखता है, अपितु उनके लिए लाभ आत्यंतिक लाभ कार्य कार्य आत्यंतिक लाभ उत्पन्न करने वाले कार्य में भी लगा रहता है सभी जीवात्माओं के लिए। तो ये उसकी उदारता है। देखिए, एक बात जो प्रभुपाद ने पहले लाइन में ही बोली है कि एक शुद्ध भक्त ही सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सभी जीवों के लिए। क्यों? क्योंकि सामान्यतः भौतिक आसक्तियों के कारण हम अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, और अगर हम दूसरों के लाभ के लिए भी कार्य करते हैं तो इसीलिए, क्योंकि हम उनमें आसक्त होते हैं। और क्यों उनमें आसक्त होते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, और इस प्रकार से, क्योंकि भौतिक जगत में जो भौतिक संसाधन हैं उनकी एक सीमित मात्रा होती है, इसलिए प्रायः बहुत बार हम कुछ लोगों का अपना लाभ करने के चक्कर में या दूसरों का लाभ करने के चक्कर में बहुत से लोगों का नुकसान कर देते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है कि मानव समाज में गर्मी को मिटाने के लिए, गर्मी की प्रॉब्लम को मिटाने के लिए एयर कंडीशनर का निर्माण किया गया, लेकिन उससे समाज में कितना पोल्यूशन फैल गया। ये कारों का निर्माण किया गया, उससे कितना पोल्यूशन फैल गया। और हम देख रहे हैं कि मानव समाज जितना प्रकृति को नष्ट कर रहा है, प्रकृति व्यवस्था को, उतना कोई भी जीव नहीं कर रहा है। तो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति के लिए असंभव है सर्वभूत हिते रता होना, यानी सभी जीवात्माओं के लिए कल्याणमय कार्य करना ये संभव होता है। क्योंकि निश्चित रूप से वो किसी कुछ वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों से लेगा, और फिर वो वस्तुएं उस व्यक्ति के पास नहीं रह पाएंगी। लेकिन यदि हम दैवीय चेतना में रहते हैं तो हम अपने आप को भगवान का, भगवान की सेवा का निमित्त मानते हैं। हम अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, हम माध्यम मानते हैं भगवान की सेवा का, और दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं ताकि वो भगवान कृष्ण के को समझें, उनकी महिमा को समझें और उनसे प्रेम करें। और ये कार्य सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए होता है। और ये कार्य हम तब भी कर सकते हैं जब हम लोग भगवान की कृष्ण, भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत आगे बढ़े ना भी हो तो भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कृष्ण की शुद्ध भक्त ना भी हों पूरी तरह से, कृष्ण की भक्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हों, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हों, फिर भी सभी जीवात्माओं के लिए कल्याणमय कार्य कर सकते हैं उनकी मदद करके कृष्ण के पास आने के लिए द्वारा। लेकिन आपको व्यक्ति कह सकता है कि आप स्वरूप सिद्ध हैं। हाँ ठीक है, हम स्वरूप सिद्ध नहीं हैं, हमें अपना आत्मा, हमारा स्वरूप हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी सभी जीवात्माओं के प्रति हम लोग हितैषी की भावना रख सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध ना भी हो, वो इस बात को जरूर समझता है कि कोई भी भौतिक वस्तु मुझको शाश्वत सुख नहीं दे सकती, और अगर लोगों को मैं भक्ति से जोड़ता हूँ तो उससे मुझको भी शाश्वत लाभ प्राप्त होगा, और जिनको मैं जोड़ रहा हूँ उनको भी वो शाश्वत लाभ प्राप्त हो, भले ही मैं स्वयं पूरी तरह से स्वरूप सिद्ध नहीं हूँ। अपितु ऐसा व्यक्ति समझता है कि दूसरों का भला करने का, उनको भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करने के द्वारा मैं आध्यात्मिक रूप से कार्य कर रहा हूँ, और इसके द्वारा मैं अपने आत्मस्वरूप, अपना जो मेरा स्वरूप है भगवान के प्रति मेरा जो शाश्वत संबंध है, उसको जागृत करने की प्रति आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा मुझ पर होगी, भगवान से प्रसन्न होते हैं, तो दूसरों का भी लाभ हो रहा है, आत्यंतिक लाभ, सर्वश्रेष्ठ लाभ, और मेरा भी बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। तो जिन लोगों को पूर्ण स्वरूप प्राप्त है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त है, और जो लोग स्वरूप सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो दोनों ही लोग सभी जीवात्माओं के लाभ के लिए कार्य कर सकते हैं भक्ति के प्रचार के लिए। तो इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं बिल्कुल शुद्ध हो जाऊंगा तब प्रचार करूंगा। ये प्रचार ही हमारी साधना है और इससे दूसरों को भी लाभ प्राप्त होता है। अब एक बात आती है कि कोई व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन उसको क्षीण कल्मषः होना चाहिए। कल्मष का अर्थ क्या है? कल्मष का अर्थ है इस प्रकृति को भोगने की इच्छा भगवान से अलग, और इस इच्छा के कारण हम निश्चित रूप से किसी ना किसी को दुख देंगे। ये तो सिद्धांत है कि अगर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्याकुल है तो वो किसी ना किसी को दुख जरूर देगा। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हैं, ये आत्मा के कल्मष हैं। अब एक अद्भुत बात यह है, भगवान बता रहे हैं जो ऋषि मुनिगण हैं, ऋषि क्षीण कल्मषः ऋषि हैं, वो इन कल्मषों को त्याग देते हैं। तो कैसे त्यागते हैं? इनको त्यागने से पहले व्यक्ति को ये समझ में आना पड़ेगा कि ये त्याज्य हैं, मतलब ये त्यागने योग्य हैं। और भक्ति करने से जब हमको ये ज्ञान होता है तब व्यक्ति का ये जो धारणा है, जो देखने का दृष्टिकोण है, वो चेंज हो जाता है। प्रायः तो हम लोग शुरुआत में काम, क्रोध, लोभ को बड़ा अच्छा मानते हैं, तो जब हम भक्ति करते हैं तो पहला साक्षात्कार ये होता है कि मैं इससे ग्रसित हूँ और मैं इनको नहीं चाहता हूँ। और फिर व्यक्ति सीरियस होगा, गंभीर होकर के भक्ति करेगा ताकि इनका निर्मूलन कर ले। जितनी मात्रा में ये इसका, इन कर्मशों का निर्मूलन हो जाता है, उतनी मात्रा में अधिक मैं लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से उनका कुछ आध्यात्मिक कल्याण कर सकता हूँ। तो अब शब्द आ रहा है यहाँ पे छिन्न द्वैधा। छिन्न का मतलब केवल सफाई नहीं होता है बल्कि एकदम तोड़ फोड़ के, काट पाट के फेंक देना होता है। ये दिखाता है कि जो ऋषियाँ, ऋषिगण हैं, भक्त हैं, वो अपनी आध्यात्मिक भक्ति प्रगति से या अपनी भक्ति की तीव्रता के द्वारा और अपनी भक्ति के कार्यों के द्वारा, जो कि एक एक तलवार की तरह है, इस जगत की द्वैतता के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है, काट देता है। क्या है? तलवार है उनकी आध्यात्मिक तीव्रता, जो पैनापन होता है ऐसे कहना चाहिए, आध्यात्मिक तीव्रता के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा इस जगत की द्वैतता के आवरण को छिन्न भिन्न करता है। जैसे हम देखते हैं इस जगत में कभी कभी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं, चेहरे पर बहुत सारे कुछ ढक के आते हैं, जिससे हम समझ नहीं पाते कि कौन व्यक्ति इस कपड़े को पहना हुआ है। इसी प्रकार से इस जगत में बहुत सारे घटनाएं होती हैं जिन पे एक आवरण है, और वो आवरण है अच्छे और बुरे का। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इस जगत में बहुत सारी घटनाएं प्राय दिन में होती ही रहती हैं जिनमें आवरण लगा रहता है, ऊपर ढका रहता है, और हम उसको बोलते हैं ये अच्छा है और ये बुरा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक भक्त समझ पाता है कि इस जगत में कोई भी चीज मुझे सुख नहीं दे सकती, और कोई भी चीज, कोई भी घटना मुझे दुख नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आत्मा हूं और इस जगत में हर वस्तु भौतिक है। तो ये जो द्वैतता का आवरण है, अच्छा बुरा अच्छा बुरा, शुभ अशुभ शुभ अशुभ, ये आत्मा को मोहित करता रहता है। आत्मा के लिए भौतिक तो कुछ भी शुभ नहीं है, सब कुछ अशुभ है। लेकिन यदि हम लोग इन वस्तुओं में आ सकते हैं भावनात्मक रूप से, तो निश्चित रूप से हम लोग दुख का, कष्टों का अनुभव करेंगे। और फिर जब इस प्रकार के द्वैत रहेगा तो वह व्यक्ति दूसरे के लाभ के लिए कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन ये द्वैतता नष्ट हो जाती है जब व्यक्ति भक्ति में तीव्रता से लगता है, दृढ़ता से लगता है। लेकिन जब व्यक्ति, हमने चर्चा कर लिया इस बात पे, तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उस आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति इस प्रकार के मोह से, मोह को छिन्न भिन्न कर देता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संचया श्यन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वरे। व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अपने आप को इस शरीर से अलग देख पाता है। जैसे नारद मुनि बोलते हैं कि वो जब भक्ति करते करते अकस्मात उनको एक दिन ये साक्षात्कार होता है कि केवल अज्ञान में ही वो अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान कर रहे थे। इसी बात को चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भद्र अभद्र ज्ञान ऐ सब मनोधर्म, ऐ भालो ऐ मंद ऐ सब भ्रम। मन के धर्म की वजह से, मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों की वजह से व्यक्ति सोचता है ये अच्छा है और ये बुरा है, और यही जगत का द्वैत है, यही हमारा मोह है। और हम कहते हैं ये हमको अच्छा, हमारे मन को अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से मैं भक्ति नहीं करूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसकी वजह से नहीं करूंगा। जैसे सुबह उठना हमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं उठेंगे मंगल आरती के लिए, और जब करना हमको अच्छा नहीं लग रहा अभी तो हम नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें, ये सब द्वैत है, और इससे व्यक्ति को ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ऐसा होता है। एक भक्त के लिए, एक भक्त के दृष्टिकोण में अच्छा और बुरा है, और अच्छा बुरा क्या है, अगर कोई वस्तु या घटना उसे कृष्ण के करीब लेके आती है, कृष्ण का स्मरण कराती है, तो अच्छी है, भले ही वो बाह्य रूप से अच्छी ना लगे। और अगर कोई कार्य उसको अच्छा लग रहा है लेकिन उसे कृष्ण की विस्मृति हो जाती है, तो फिर ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो भक्त का ये जो भालू और मंद, यानी अच्छा और बुरा का जो निर्णय है, ये सच्चे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। और इसका कारण भी है, क्योंकि सभी वेदों का, सभी विधि निषेधों का उद्देश्य यही है कि कृष्ण की हमेशा स्मृति हो, और कृष्ण की स्मृति, विस्मृति कभी भी नहीं हो। तो अगर कोई घटना एक भक्त को कृष्ण का स्मरण कराती है और उस बाहर रूप से वो दुख भी दे रही है, तो भी सच्चे भक्त के लिए वो अच्छा ही है। तो अपने शक्ति के द्वारा मोह ये कह सकते हैं, जगत में जो मोह उत्पन्न हो रहा है विभिन्न घटनाओं के द्वारा, विभिन्न सिचुएशंस के द्वारा, इसके बियॉन्ड, इसके परे देख करके देखना कि जो शक्ति है, ये हमको आध्यात्मिक, अपने कह सकते हैं जो हमारा आध्यात्मिक पथ है, उस पर हमको स्थित रखेगा। नहीं तो छोटी छोटी घटनाओं की वजह से हम अपनी भक्ति के कार्यों को छोड़ देंगे। घर में किसी के कुछ बीमार हो गया, कुछ भी बुरी घटना हो गई, तो व्यक्ति अपनी सेवा को छोड़ देगा, जो अच्छे भक्त नहीं होते। ये तात्मा न, जितने हद तक हमें अपने इंद्रियों पर संयम है और जितनी हद तक हम लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर दृढ़ हैं, उतनी हद तक हम इस द्वैतता भरे, ड्वालिटी, सुख दुख मान अपमान भरे जगत की घटनाओं के परे देख पाएंगे। और ये ज्ञान हमारे हृदय में धारण रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी मात्रा में हम लोग अपनी इंद्रियों को स्वयं करेंगे और जितनी मात्रा में हम आत्म साक्षात के पथ पर लगे रहेंगे, दृढ़ता से भक्ति करते रहेंगे, तो उतनी मात्रा में ये जो हमारा दृष्टिकोण है जगत का, द्वैतताओं के परे देखने का, सुख दुख लाभ हानि के परे देखने का, ये जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में बना रहेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति नियमित रूप से साधना करे ताकि इस प्रकार का ज्ञान उसके हृदय में बना रहे। इसीलिए नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत जब हम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो फिर ये ज्ञान बना रहता है। केवल दिन में एक बार पढ़ने से नहीं चलेगा, क्षमा कीजिएगा, केवल हफ्ते में एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को ओलंपिक में जीतना है तो उसका जब अभ्यास कर रहा है तो कभी उसका मन करेगा, कभी उसका मन नहीं करेगा, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, लेकिन फिर भी वो रोज अभ्यास करेगा और इस अभ्यास के द्वारा उसका मन और शरीर को ट्रेनिंग प्राप्त हो जाती है और फिर वो ओलंपिक में जीत पाता है। अब एक और बात है, यहाँ पे एक और शिक्षा हम जो मिल रही है, और वो ये है कि जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध अशुद्ध होगा उतना ही हमारी जगत में आसक्ति होगी और उतना ही अधिक इस जगत की वस्तुएं हमारे दृष्टिकोण को बाधित करेंगी। मतलब कि जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमें ये भक्ति भी कर रहे हैं तो हमको ये प्रोत्साहन मिलेगा और ये मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, वो मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये अच्छा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, ये बहुत ही गहरी बात है, जैसे जैसे हमारा भक्ति के द्वारा हृदय शुद्ध होगा उतना ही हमारा फोकस कृष्ण को संतुष्ट करने में बढ़ता चला जाएगा। ये बात हमारे हृदय में धंसती चली जाएगी कि इस जगत में कोई भी वस्तु मुझको संतुष्ट नहीं कर सकता है अपितु कृष्ण की सेवा के अलावा। ये बहुत सुंदर बात है, इस पूरे लेक्चर से आपको समझ में आना चाहिए कि जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना ही कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी होऊंगा, ये भावना हृदय में धंसती चली जाएगी, एकदम प्रकट होने लग जाएगी और इसी कारण से कृष्ण की सेवा का उत्साह भी व्यक्ति को बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जिस प्रकार से, और हाँ एक और बात है, जिस प्रकार से मैं समझूंगा कि मेरे दुखों की निवृत्ति कृष्ण की सेवा से ही होगी, तो उसी प्रकार से हम ये भी समझेंगे कि अन्य जीवात्माओं की दुखों की निवृत्ति भी कृष्ण की सेवा से ही होगी। तो जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा उतनी ही मात्रा में हम जीवों के कल्याण करने के लिए उत्सुक होंगे। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में भी, 40 रुपए होने के बावजूद भी अन्य जीवों के कल्याण के लिए, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं था, अमेरिका गए और पाश्चात्य देश में जाकर के कृष्ण भावना का प्रचार किया। और कितना प्रभुपाद जी को संघर्ष करना पड़ा उन लोगों के लिए जिनका वास्तुतः प्रभुपाद से खून का कोई संबंध नहीं था। तो कारण यही है, क्योंकि उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध है, वो भगवान की भक्ति की महिमा को समझते हैं और इस कारण से वो दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं। ये स्वभाव हो जाता है। एक्चुअली शुद्ध भक्ति करने से ये गुण अपने आप ही आने लगता है, सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम और सभी जीवात्माओं का प्रेम उस व्यक्ति के प्रति होने लगता है। ये सभी भक्तों के हम उसमें देखते हैं। नहीं तो सोचिए ना कि एक दो व्यक्ति दीक्षा देते हैं, वो क्यों दीक्षा देंगे? उनको उस व्यक्ति के सारे कर्म धारण करने पड़ रहे हैं, क्यों करेंगे वैसा? यही कारण है, क्योंकि वो अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लाभ के लिए सोचने लग जाते हैं, निस्वार्थ होने लगते हैं। तो इसलिए हमको भक्तों के संग में आकर प्रारंभ से ही गंभीर होकर भक्ति करनी चाहिए। जिस भी अवस्था में है जितना हम कर सकते हैं अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। जितने हम अच्छे से भक्ति करेंगे उतना ही हमारे हृदय का शुद्धिकरण जल्दी होगा, उतना ही सारे गुण जल्दी से जल्दी प्रकट होने लग जाएंगे। तो जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है भक्ति के द्वारा, उसका हृदय इस जगत की द्वैतताओं से प्रभावित नहीं होता, यानी मान अपमान लाभ हानि सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, और यानी सुख दुख आएंगे लेकिन उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं कर पाते, और भक्ति के पथ पे वो बिल्कुल फोकस हो जाता है, बिल्कुल फिक्स हो जाता है, और इस प्रकार से वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है और मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।